आप सभी को निशिकांत का प्रणाम। आज का विषय है
अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका। सत्यवती से राजा शांतनु के दो पुत्र हुए, एक चित्रांगद, दूसरा विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के उपरांत चित्रांगद राजा बना, किंतु वह एक गंधर्व युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। इसके बाद सत्यवती का दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। विचित्र वीर्य की आयु उस समय छोटी थी, उसके बालिग होने तक सारा राजकाज भीष्म को ही चलाना पड़ा था। जब विचित्र वीर्य बालिग हो गया, तब भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। भीष्म को पता चला कि काशीराज की कन्या का स्वयंवर हो रहा है, तो भीष्म स्वयंवर में भाग लेने के लिए काशी चले गए। काशीराज की कन्याएं अंबिका, अम्बा और अम्बालिका अपूर्व सुंदरियाँ थीं। उनके रूप और गुणों का यश दूर दूर तक फैला हुआ था। स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बहुत से राजा और राजकुमार वहां आए हुए थे। उस स्वयंवर में भीष्म को आया देख स्वयंवर में आए हुए सभी राजा खुसुर खुसुर करने लगे। वे सोच रहे थे कि भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, फिर वे स्वयंवर में क्यों आए हैं। सभी के जुबान पर यही बात थी। सभी उनके शौर्य से भयभीत थे। उन्हें यह पता था कि वे अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए स्वयंवर में आए हैं। वे सभी भीष्म का परिहास उड़ाने लगे। काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की ओर से दृष्टि फेर ली। भीष्म के स्वाभिमान को इससे बहुत चोट पहुंची। उन्होंने क्रोध में भरकर वहां उपस्थित सभी राजाओं एवं राजकुमारों को युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि मुझे हराकर ही तुम इन तीनों राजकुमारियों को ले जा सकते हो। राजाओं ने उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर लिया और सभी ने मिलकर एक साथ भीष्म पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कोई भी भीष्म के सामने ठहर नहीं पाया। सोमदेव का राजा शालव बड़ा वीर और स्वाभिमानी राजा था। काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा उससे प्रेम करती थी। उसने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया था। जब भीष्म तीनों कन्याओं को अपने साथ रथ पर बिठाकर ले जा रहे थे, तब राजा शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसे रोकने का प्रयत्न किया। इससे शाल्व और भीष्म में भयंकर युद्ध छिड़ गया, किंतु जल्दी ही भीष्म ने उसे हरा दिया। परंतु अम्बा ने उनसे उसे जीवित छोड़ने की प्रार्थना की, तो उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। शीघ्र ही भीष्म ने काशीराज की दो कन्याओं अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्र वीर्य से कर दिया। काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म से पहले ही बता दिया कि वह शाल्व से प्रेम करती है और उसे अपना पति मान चुकी है। भीष्म ने बिना किसी प्रतिरोध के अम्बा को सोमदेश का राजा शाल्व के यहाँ भिजवा दिया, लेकिन शाल्व ने उसे यह कहकर वापस कर दिया कि वह बलपूर्वक हरण की गई कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। भीष्म ने उसका सभी के सामने अपमान किया है। बेचारी अम्बा अत्यधिक दुखी होकर हस्तिनापुर लौट आई। उसने भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। तब भीष्म ने विचित्र वीर्य से कहा कि वह अम्बा से विवाह कर ले, लेकिन विचित्र वीर्य भी अम्बा से विवाह करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, तात्श्री, जिस कन्या का मन किसी अन्य व्यक्ति के साथ लगा हो और उसने अपना मन स्वयं किसी को अर्पित कर दिया हो, मैं उसे अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ। तब तो बेचारी अम्बा ना तो इधर की रही और ना उधर की, कोई मार्ग अन्य न था। अम्बा ने भीष्म से कहा, हे गांगे, अब मेरा क्या होगा? आप मुझे हर कर लाए हैं, अब आप ही मुझसे विवाह करें। भीष्म ने उसकी बात सुनी तो अजीब से धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला दिया। अम्बे, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। मैं विचित्र वीर को फिर से समझाने का प्रयत्न करूँगा, किंतु न तो विचित्र वीर माना और ना ही शालो ने ही उसे स्वीकार किया। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस नहीं हुए। अम्बा को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई, आंखों से आंसू सूख गए, परंतु उस दिन किसी को दया नहीं आई। उसे सारा दोष भीष्म पर लगा दिया। वह भीष्म से बदला लेने के लिए अग्नि में जल गई और भीष्म को पराजित करने के लिए अनेक राजाओं से सहायता मांगी, परंतु कोई भी भीष्म से टकराने के लिए आगे नहीं आया। हार कर अम्बा ने भगवान कार्तिकेय का ध्यान किया और घोर तपस्या की। भगवान कार्तिकेय उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पास आए उन्होंने सदा ताजा रहने वाला कमल के फूलों की एक माला अम्बा को दी और कहा, अम्बा यह माला तू जिसके गले में डाल देगी वही भीष्म के विनाश का कारण बनेगा। माला पाकर अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई। वह उस माला को लेकर अनेक राजाओं के पास गई किंतु कोई भी भीष्म जैसे वीर का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाया। द्रुपद से प्रार्थना की, हे राजन आप बड़े वीर और प्रतापी हैं, आप मेरे अपमान का बदला लेने के लिए आपको भीष्म से युद्ध करना चाहिए। राजा द्रुपद ने भी अम्बा की बात नहीं मानी तो वह निराश होकर माला को द्रुपद के महल के द्वार पर टांग कर चली गई। सारे क्षत्रियों से निराश होकर वह भगवान परशुराम के पास पहुंची और अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। अम्बा की करुण कथा सुनकर परशुराम का हृदय द्रवित हो उठा। वे अम्बा की सहायता के लिए भीष्म से युद्ध करने चल पड़े। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म परशुराम की ललकार सुनकर युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े हो गए। दोनों ही कुशल योद्धा थे, दोनों ही ब्रह्मचारी थे। उन दोनों के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। हार और जीत का निर्णय होना कठिन था। अंत में परशुराम ने स्वयं ही अपनी हार मान ली और अम्बा से कहा, बेटी जो कुछ मेरे वश में था मैंने किया, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण में चली जाओ। परंतु अम्बा दुखी होकर भीष्म के पास जाने की बजाय हिमालय की ओर चली गई। वहां उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कैलाशपति भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अम्बा को दर्शन देते हुए कहा, पुत्री तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अगले जन्म में तुम भीष्म की मृत्यु का कारण होगी। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद अम्बा ने तत्काल चिता तैयार की और अग्नि की गोद में अपने आप को समर्पित कर दिया। महादेव के वरदान से अम्बा ने दूसरे जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई। पिछले जन्म की हर बात उसे स्मरण थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने खेल खेल में राजद्वार पर टंगी कार्तिकेय के द्वारा प्रदान की गई माला उतार कर अपने गले में पहन लिया। राजा द्रुपद भयभीत हो उठे। वे भीष्म से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर दुखी मन से अपनी पुत्री को घर से निकाल दिया। अम्बा ने वन में जाकर घोर तपस्या की और अपने तपोबल से अपना स्त्री रूप त्याग दिया और पुरुष वेश रूप धारण कर लिया। लोग अब उसे शिखंडी के नाम से पुकारने लगे।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोटिवेशन।